सुबह की हल्की धूप मॉल की बड़ी बड़ी कांच की खिड़कियों से छनकर अंदर आ रही थी। एयर कंडीशनर की ठंडी हवा और हल्की सी परफ्यूम की खुशबू पूरे फ्लोर में फैली हुई थी। मॉल का म्यूजिक सिस्टम धीमे धीमे कोई रोमांटिक सा गाना बजा रहा था, लेकिन रैना का ध्यान गानों में नहीं था। वो अपने स्टोर के काउंटर पर खड़ी नई आई हुई घड़ियों के डिस्प्ले को सजा रही थी। उसके बाल एक साफ सी बोनी में बंधे थे, हल्का सा मेकअप और गले में पतली सी चेन। चेहरा थका हुआ था, लेकिन मुस्कान वही थी जो हर कस्टमर को दिखानी पड़ती है। मैम, ये नई कलेक्शन शेल्फ पर लगा दीजिए, मैनेजर ने पास से गुजरते हुए कहा। जी सर, रैना ने सिर हिलाया और काम में लग गई, घड़ी की सुइयां जैसे धीरे धीरे खिंच रही हों। तभी अचानक उसकी नज़र मॉल के मेन एंट्रेंस की तरफ पड़ी और वो ठिठक गई। वो शख्स वही था, सूट बूट में, हाथ में महंगी खड़ी, चाल में वही पुराना घमंड, विक्रम। रैना की सांस एक पल को रुक सी गई। उसकी उंगलियों ने डिस्प्ले का ग्लास कसकर पकड़ लिया। ये वही आदमी था जिससे कभी उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन वक्त रहते उसने खुद को उस बंधन से खींच लिया था। और ये सिर्फ टूटी हुई सगाई की कहानी नहीं थी, बल्कि वो रिश्ता रैना के लिए एक जाल था जिससे निकलना उसकी सबसे बड़ी जीत थी। विक्रम की नज़र जैसे उसे सीधे भेद गई। वो ठहरे अंदाज में चलता हुआ उसके काउंटर तक आया। अरे रैना, उसने जानबूझकर ज्यादा जोर से कहा, जैसे आसपास के लोग भी सुन लें। तुम यहाँ? रैना ने खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश की। हाँ, जॉब करती हूँ। जॉब? उसकी आंखों में एक मजाकिया चमक आ गई। मॉल में? ये सब सेल्स का काम। रैना ने होंठ खींच लिए, लेकिन चेहरा सपाट रखा। हाँ, इसमें कोई बुराई है क्या? विक्रम हंसा, वो भी वही पुरानी तिरस्कार से भरी हंसी। नहीं, बुराई तो नहीं, लेकिन सोचो, अगर तुमने मुझसे शादी की होती तो आज तुम्हें ऐसे खड़े होकर दिन भर लोगों को घड़ियां बेचनी नहीं पड़ती। तुम्हारे पास अपनी कार, अपना ड्राइवर, अपना घर होता। रैना ने महसूस किया जैसे आसपास की ठंडी हवा भी अचानक भारी हो गई हो। तुम्हें क्या लगता है, ये सब कहकर तुम मुझे शर्मिंदा कर दोगे? उसने धीमे स्वर में कहा। विक्रम आगे झुककर, जैसे वो उसकी निजी जगह में घुस आया हो, फुसफुसाया, शर्मिंदा नहीं, बस तुम्हें याद दिला रहा हूँ कि तुमने क्या खोया है। रैना का गला सूखने लगा, लेकिन उसने खुद को टूटने नहीं दिया। और मैं तुम्हें याद दिला दूं? उसकी आंखों में सीधा देखते हुए उसने कहा कि जो मैंने खोया नहीं वही मेरी सबसे बड़ी जीत थी। विक्रम की मुस्कान एक पल को थमी, लेकिन अगले ही सेकंड वो फिर से सहज हो गया। चलो मान लिया, लेकिन सच कहूं तो तुम्हें यहां देखकर अच्छा लगा। अब भी उतनी ही खूबसूरत हो, बस थोड़ी थकी हुई लग रही हो। रैना ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने डिस्प्ले में घड़ियों को ऐसे जमाना शुरू किया जैसे विक्रम वहां खड़ा ही ना हो, लेकिन अंदर से उसकी धड़कनें तेज थीं। विक्रम ने जानबूझकर और बातें शुरू की, उसका पुराना फ्लैट, नई कार, उसके बिजनेस के टर्नओवर के किस्से और बीच बीच में ताने, अगर तुमने हाँ कह दी होती। इसी दौरान मॉल के बाहर ग्लास के पार से एक नज़र उन दोनों पर टिक गई। अखिल, वो शायद किसी काम से या बस यूं ही रैना को सरप्राइज देने आया था। उसकी आंखों में उस पल की तस्वीर साफ उतर गई। रैना और विक्रम आमने सामने खड़े और विक्रम के चेहरे पर एक अजीब सा मालिकाना भाव। अखिल कुछ कदम अंदर बढ़ा, लेकिन फिर रुक गया। वो दूर से देख रहा था, रैना ने उसे नोटिस नहीं किया था। उसके माथे पर हल्की सी शिकन आई। उसका मन हुआ कि जाकर विक्रम को बीच में रोक दे, रैना के पास खड़ा हो जाए, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। शायद वो देखना चाहता था कि रैना इस बातचीत को कैसे संभालती है। कुछ देर खामोश खड़े रहने के बाद अखिल ने लंबी सांस ली और वापस मुड़ा। वो मॉल से बाहर निकलकर अपनी कार तक गया। ड्राइवर सीट पर बैठते हुए भी उसकी नजरें मॉल के कांच के दरवाजों की तरफ थीं। उसका हाथ स्टीयरिंग पर था, लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं किया।